सौरभ कुमार साहब, कलीदी गवाह की हैसियत से मर्ज़े हाशमी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया, और ये 2-3 दिन के बाद वहाँ की वाशिंगटन की एक अदालत ने बयान दिया। फौरी तौर पर बयान भी नहीं दिया गया। तो ये कानून, तो इसकी खुद जो अमेरिका के माहिरीन कानून हैं वो भी इसकी मजम्मत करते हैं, वो भी इस पर नुक्ताचीनी करते हैं। तो ऐसे तो किसी भी अमेरिकी शहरी को किसी दूसरे मुल्क में पकड़ा जा सकता है, और किसी भी शहरी को ये पकड़ के कहा जा सकता है साहब इसके पास अहम मालूमात हैं। इस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे?
देखिए, ये जो जिस एक्ट के अंदर इनको पकड़ा गया है, वो एक्ट अपने आप में एक जो एक जनरल जिसको ह्यूमन राइट के जो ह्यूमन राइट्स के जो भी लेड आउट एक्ट्स हैं उसके खिलाफ जाता है। ये पूरा एक्ट ही उसके खिलाफ जाता है। इस पर बहुत डिबेट अमेरिका में भी हो चुकी है, इस पर बहुत डिबेट यूरोप में भी हो चुकी है। यूरोप में भी इसको देखा जाता है कि कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है, पर अमेरिका में चूंकि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसा उन्होंने बताया भी कि 9/11 के बाद जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पैरेलली इतना पावर दे दिया गया है उनको कि उनका जो पावर उनको जो दिया गया है उसका वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही एम्बिगियस होता है, वो बड़ा आर्बिट्री होता है, उसके उसका कोई एक लॉजिक नहीं है। अब दूसरे मुल्कों में ये होता है कि अगर इस तरह का कोई लॉ है भी और अगर उसका आप आर्बिट्रेली यूज भी करते हैं तो वहाँ की जुडिशरी इतनी डिपेंडेंट होती है कि वो इसको यानी इसके अगेंस्ट में फैसला दे सकती है, जैसे कि ब्रिटेन में देखा गया है या स्पेन में और बाकी दूसरे मुल्कों में देखा गया। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसकी जुडिशरी भी पॉलिटिसाइज जुडिशरी होती है, यानी वहाँ पर जो भी जज जिसे भी बनाया जाता है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा एक तरीके से होता है, और वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से उसको वहाँ पे बनाती है। तो ये क्या करते हैं एजेंसीज वाले, इनको पता होता है कि किस इलाके में प्रो रिपब्लिकन जजेस जो हैं किस सर्किट में बैठे हुए हैं, उनको पता है कि ये जज जो है इसका जो आइडियोलॉजी है वो एंटी मुस्लिम या आप कह सकते हैं कि एक तरीके का जो अल्ट्रा राइट आइडियोलॉजी है, और उसकी उसी बिना पे ये क्या करते हैं कि इन यानी जिन्हें भी गिरफ्तार कर उसे जानबूझकर ऐसे इलाके में गिरफ्तार किया जाता है जहां के सर्किट कोर्ट का जज उनके तरफ फैसला दे सके। तो देखें, ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, और ये बड़े ही चालाकी से इस तरह का फैसला लेते हैं जिसमें कि ये केस उसी जज के पास जाए जिस जज के बारे में श्योर होते हैं कि फैसला उनके हक में देंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक मसला है, ये सिर्फ जुडिशियल मामला नहीं, ये पॉलिटिकल मामला है, और बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स के जो एक्ट्स हैं उसके सामने उसके पैरेलल रख के इसको देखा जाए और इसको किसी तरीके से इसके खिलाफ एक ब्लोबैक जो है वो किया जाए।
मर्ज़े हाशमी का जो डिबेट है जो प्रेस टीवी में करती थी और उनके जो नज़रियात थे जो उनके ख्यालात थे उनको जब हम देखते हैं तो वाज़े तौर पर साम्राज्य मुखालिफ उनके नज़रियात थे, इसराइल की जो रियासती दहशतगर्दी है उसके ख़िलाफ़ थे, और जो पिछले चंद बरसों से तकफीरी जो दहशतगर्दी सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी चंद हुकूमतों ने जिसको जन्म दिया था जिसको परवान चढ़ाया था उसके ख़िलाफ़ वो जम के बोलती थी। आप देखें कि 2 अक्टूबर 2018 को एक वाकया इस्तांबुल में पेश आया जमाल खाशुकजी को गिरफ्तार या उनको लापता करके फिर उनको जिस तरीके से कत्ल किया गया, और उसके 2.5 महीने के बाद 13 जनवरी को ये दूसरा वाकया पेश आया। जब जमाल खाशुकजी का वाकया पेश आया तो अमरीकी सदर ट्रंप जो कि सबसे आला अहदे पर अमरीका के फायज हैं वो अपने बयान इस तरह से बदल रहे थे कि जितनी तेज़ी से गिरगिट या गिरगिटान भी अपने रंग नहीं बदलता। और फिर 2.5 महीने के बाद मर्ज़े हाशमी को उसी ट्रंप इंतजामिया के अहलकारों ने गिरफ्तार किया। तो आप क्या समझते हैं कि जो सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का जो सिलसिला या उनके खिलाफ या उनकी जो आवाज़ दबाने का जो सिलसिला है, आप ये समझ रहे हैं कि सऊदी अरब इसराइल और अमेरिका की मिली हुई साजिश है?
हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक, क्योंकि मैं इसको लेके एक इसको वाइड इस पे पर्सपेक्टिव में आपको देना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया। देखें, जो अमेरिका में लॉ है वो ये कहता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उसको आप अपना काम करने से नहीं रोक सकते, पहली बात। दूसरी बात कि एक जो भी सर्टिफाइड जर्नलिस्ट है उसकी आप स्नूपिंग नहीं कर सकते, आप तो खैर किसी की भी नहीं कर सकते, किसी अपने सिटीजन की भी जांच तब तक नहीं कर सकते जबकि आपको अपने कोर्ट से आपको एक क्लियर आपको वो ना मिल जाए, परमिशन मिल जाए, तब तक आप उसकी उसको फ़ोन टैप नहीं कर सकते, उसके पीछे आप अपने जासूस नहीं लगा सकते, इस तरह की चीज़ें हैं वहाँ पर। इसका इन्होंने एक रास्ता निकाला, एक आपने सुना होगा एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन के आई है जिसका नाम है 5 आईज यानी 5 आंखें। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेसिकली अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये पांच ऐसी कंट्रीज है जिनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर बनाई है, इसलिए फाइव आइज मतलब पांच मुल्कों की आंखें।
जी,
अब देखें इन्होंने क्या रास्ता निकाला, एक चोर रास्ता जिसको कहते हैं उन्होंने निकाला है। ये इसमें क्या है कि आप अपने सिटीजन्स के खिलाफ स्पाइंग नहीं कर सकते, आप उनकी टैपिंग नहीं कर सकते, लेकिन कोई कानून ये नहीं कहता कि आप दूसरे मुल्क के सिटीजन की स्पाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सटर्नल जो एजेंसीज हैं वो यही काम करती हैं। अब ये क्या करती है कि जैसे अमेरिका के वो सिटीजन, जैसे ये इनका वाकया है, इसकी स्पाइंग और इनका टैपिंग और इनकी मूवमेंट जो है वो बाकी के जो चार मुल्क हैं उनकी एक्सटर्नल एजेंसीज कर रही होंगी। अब देखें इन्होंने कानून से एक चोर रास्ता निकाल लिया, क्योंकि आपकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सिटीजन्स के खिलाफ नहीं कर सकती, तो आपने बाकी चार मुल्कों को यह काम दे दिया कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इनका पीछा करें, और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज उन कंट्रीज के सिटीजन्स का करती हैं। यानी एक लॉ है जो यूनाइटेड नेशंस के का एक जो कह सकते हैं उसमें इंस्ट्राइंड है, उस लॉ की आपने उसका एक चोर रास्ता निकाल के आपने ये पूरा मामला शुरू किया है। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का मैटर अब नहीं है, आइंदा महीनों में सालों में आप देखेंगे कि इस तरह के इंसिडेंट्स और बढ़ती जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस ये जो एक खिलाफ वर्जी है इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया।
तो सौरभ साहब अगला सवाल भी आपसे करना चाहूंगा, वक्त हमारा खत्म होना चाहता है। तो ये जो सहाफती बरादरी है, मीडिया के जो लोग हैं आलमी सतह पर, उनका रद्दअमल खुलकर क्यों नहीं सामने आया, जैसा कि जमाल खाशुकजी के केस में आया और अच्छा रद्दअमल आया, उसकी जितनी तारीफ की जानी चाहिए कम है, लेकिन मर्ज़ी हाशमी के केस में हुआ रद्दअमल, रिएक्शन आया मीडिया की तरफ से, लेकिन जैसा आना चाहिए था वैसा अब तक नहीं आया।
देखिए फ्रेंकली मैं आपको बताऊं तो वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली और अमेरिका में सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊं कि ये डिपेंड करता है कि विक्टिम कौन है, उनका जो नज़रिया है उनका जो आयाम है उसमें विक्टिम कौन है ये डिपेंड करता है। यहाँ देखें विक्टिम पहली बात फीमेल, दूसरी बात मुसलमान, तीसरी बात शिया मुसलमान, चौथी बात ईरानियन नेटवर्क में काम करती है, और पांचवी बात की अफ्रीकन डिसेंट की हैं। आप इस पांच चीज़ों को मिलाएं और दोबारा ये सवाल करें कि आपको लगता है कि एक ग्लोबल क्राई जो है इसके अगेंस्ट में कभी उठेगा? ये जो हिपोक्रेसी है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, जहां पर कि उन जर्नलिस्टों की तो वो बात करते हैं जिससे कि उनके अपने मफादात जो हैं वो पूरे होते हैं, बट एक जहां पर ऐसा कोई जर्नलिस्ट हो जिससे उनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो तो उसकी बात वो नहीं उठाते। और यहां तो मसला ही यही है कि जो मैंने आपको पांच पर्सपेक्टिव दिए इस जर्नलिस्ट के, ये पांच ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जो कभी भी बाकी जर्नलिस्ट जो वेस्टर्न कंट्री के हैं वो इनके पीछे यूनाइट होके नहीं आएंगे। ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है।
ठीक है, किलीदी गवाह कैसे से उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका हिजाब उतार लेना और उनको जबरदस्ती वो खाना खिलाना जो दीन इस्लाम में जिस पर पाबंदी ममानियत है, या इसी तरीके से उनके हाथ और पैरों में जंजीर डाल देना, क्या उन्होंने कोई जुर्म किया है, जबकि खुद अदालत का कहना है कि उन्होंने जुर्म नहीं किया, ये क्यों और इसकी दलील क्या है, इसकी ये कहां से जवाब पेश कर सकते हैं इसका?
देखें ये तो यूएस कायदे से जब आप गवाही के लिए किसी को रख रहे हैं तो ये डिटेंशन होता है, आप तो पहली बात है कि उसको जेल में नहीं डालते, उसको किसी और जगह रखा जाता है। लेकिन अमेरिका में सबका बिहेवियर जो है वो एक बचपन से जिस तरह की उनकी तरबियत होती है ना, उस तरह का बिहेवियर होता है। अभी आप देखें, आपने दो दिन पहले देखा होगा एक जहाँ पे स्कूल के बच्चों ने किस तरह से एक नेटिव अमेरिकन का मजाक उड़ाया और किस तरह से उसको धमकी दे रहे थे, तो यही तरबियत है वहाँ के स्कूल्स में, इस तरह की तरबियत दी जाती है। एक जो बिल्कुल रेशियल इन्वायरमेंट में उनकी तरबियत होती है वो आगे चल के वो जिस भी जॉब में हो, चाहे वो जेल में हो या कहीं भी ऑफिसर हो, वो अंदर से निकलता है, क्योंकि हर कुछ तो तरबियत पर ही डिपेंड करता है। अमेरिका में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसा उनके साथ हुआ है, ये वहाँ बहुत ही कॉमन है। अब धीरे धीरे यूरोप में भी होने लगा है, पर जिस तरह की अपब्रिंगिंग, जिस तरह का ब्रेन वॉशिंग, जिस तरह का एक सोशल कंस्ट्रक्ट अमेरिका में बनाया गया है, उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। उनका एक किरदार उस तरह का हो गया है, एक मेंटेलिटी उस तरह की बन गई है।